लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आप्रवासियों, शरणार्थियों और युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि शिक्षा पाने के उनके अधिकार का सदैव सम्मान किया जाए, जो एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। यह संत पापा का चौथा विश्व प्रेरितिक पत्र है। विश्व में परिवर्तन की शुरुआत हृदय से हो सकती है और कार्य जो हृदय की झलक देते हैं की चर्चा करते हुए हमने अपने पिछले प्रसारण में कहा कि यीशु ने हमें अपने प्रेम की गहराई को अपनी लंबी शिक्षा में नहीं, लेकिन ठोस कार्य में व्यक्त किया है। दूसरों के संग उनके मिलन और वार्ता करने पर विचार करते हुए हम इस बात को अनुभव करते हैं कि वे हम सबों के संग किस तरह व्यवहार करते हैं। यह हमारे लिए स्पष्ट होता है जब हम यीशु को कार्य करते हुए देखते हैं। वे लोगों को खोजते हैं, उनके पास जाते, सदैव अपने को उनसे मिलन हेतु खुला रखते हैं। हम इसे सामारी नारी के संग यीशु की वार्ता में पाते हैं, जहां वे उनके संग रुकते और बातें करते हैं जब वह पानी लेने को आती है। हम इसे तब देखते हैं जब रात के अंधेरे में वे निकोदेमुस से मिलते हैं, जो दूसरों के द्वारा देखे जाने को लेकर अपने में भयभीत अनुभव करते हैं। हमें इस बात को लेकर आश्चर्य होता है कि वे अपने चरणों को एक वेश्या के द्वारा धोने देते हैं। वहीं एक नारी को व्यभिचार में पकड़े जाने पर वे कहते हैं, मैं भी तुम्हें सजा नहीं दूंगा। या पुनः जब वे अपने शिष्यों को उनकी उदासीनता के लिए फटकारते और राह के किनारे पड़े अंधे व्यक्ति को चुपचाप कहते हैं, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यीशु ख्रिस्त हमें ईश्वर की निकटता, करुणा और कोमल प्रेम को प्रकट करते हैं। श्रोताओं, जब यीशु किसी को चंगा करते हैं जिसकी चाह वे रखते हैं, तो वे ऐसा केवल दूर से नहीं करते हैं, बल्कि वे उसके निकट आते हैं। वे अपना हाथ बढ़ाते और उसका स्पर्श करते हैं। वे उसके हाथों को छूते हैं, उसने उनकी आंखों को छुआ। एक बार वे रुककर बहरे व्यक्ति की चंगाई अपने थूक से करते हैं, जैसे कोई माता करती हो, जिससे लोग उनके बारे में यह न सोचें कि वे उनके जीवन से दूर हैं। ईश्वर हमारी देख रेख के लिए सर्वश्रेष्ठ विज्ञान को जानते हैं। अपनी करुणा में ईश्वर हमें केवल अपने शब्दों से प्रेम नहीं करते हैं, बल्कि वे हमसे मिलने आते हैं और अपनी निकटता के द्वारा वे हमें अपने कोमल प्रेम की गहराई को व्यक्त करते हैं। श्रोताओं, यदि हम अपने जीवन में दूसरों पर विश्वास करने हेतु कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि झूठ ने हमें चोट पहुंचाया है, हमें घायल और निराश किया है, तो ईश्वर हमारे कानों में हमें फुसफुसाते हैं, धीरज रखो पुत्र, धीरज रखो पुत्री। वे हमें अपने भय पर विजयी होने को प्रोत्साहित करते हैं और हमें इस बात की अनुभूति देते हैं कि उनके साथ जो हमारी बगल में रहते हैं, हमारे लिए खोने को कुछ भी नहीं है। पेत्रुस के भय की स्थिति में यीशु तुरंत उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेते और यह कहते हैं, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें अपने निकट आने दें और अपनी बगल में बैठने दें। बहुत से लोग हैं जिन पर हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उनके संग ऐसी बात नहीं है। अपने पापों के कारण हम ना हिचकिचाएं। हम इस बात को याद रखें कि बहुत से पापी आए और उनकी बगल में बैठे, लेकिन यीशु उनमें से किसी के द्वारा अपने में शर्मिंदगी का अनुभव नहीं करते हैं। यह धर्मी अभिजात्य वर्ग था जो उनके बारे में शिकायत करते और उन्हें एक पेटू और एक मतवाला, नाकेदार और पापियों का मित्र कहते हैं। जब फरीसी यीशु के इन कार्यों के लिए और पापियों के संग निकट रहने के लिए उनकी टीका टिप्पणी करते, तो वे उन्हें अपने जवाब में कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि वही यीशु अब हमारी प्रतीक्षा करते हैं, जिससे वे हमारे जीवन में जीवन की ज्योति ला सकें, हमें ऊपर उठाते हुए अपनी शक्ति से भर सकें। अपनी मृत्यु के पहले वे अपने शिष्यों को यह सुनिश्चितता प्रदान करते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास लौटकर आता हूँ। कुछ समय के बाद दुनिया मुझे नहीं देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखोगे। यीशु सदैव हमारे संग रहने हेतु एक उपाय खोजते हैं, जिससे हम उनके संग मिल सकें। श्रोताओं, सुसमाचार हमें बतलाता है कि एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आता है, जिसमें आदर्श भरा हुआ है, यद्यपि उसमें जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति की कमी है। यीशु उसकी ओर निगाहें फेरते हैं। क्या हम उस क्षण के बारे में विचार कर सकते हैं जहां उस मिलन में उस व्यक्ति की आंखें और यीशु की निगाहें एक दूसरे पर पड़ती हैं? यदि यीशु हमें बुलाते और एक प्रेरिताई कार्य सौंपते हैं, तो वे हमें सबसे पहले देखते हैं। वे हमारे हृदय की थाह लेते हैं, हमारे बारे में सारी चीजों को जानते हैं, अपनी निगाहें हम में वे गड़ाए रखते हैं। गलीलिया समुद्र के तट पर चलते हुए जब वे दो भाइयों को देखते, तो उनके साथ ऐसा ही होता है, और वहां से आगे बढ़ते हुए वे और दो भाइयों को देखते हैं। श्रोताओं, सुसमाचार के बहुत से पन्नों में हमें इस बात का उदाहरण मिलता है कि यीशु व्यक्तिगत रूप में लोगों पर ध्यान देते हैं, विशेषकर उनकी समस्याओं और जरूरतों पर। हमें इस बात को बतलाया जाता है कि जब वे भीड़ को देखते, तो वे दया से भर आते, क्योंकि वे उन्हें दुखों से पीड़ित और निस्सहाय पाते हैं। जब कभी हम अपने में इस बात का अनुभव करते कि हर कोई हमारा तिरस्कार कर रहा है, हमें क्या हो रहा है, हमारी कोई चिंता नहीं कर रहा है, हम किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, ऐसी स्थिति में वे हमारी चिंता करते हैं। नथनायल को वे अपने से अलग और अपने कार्यों में व्यस्त कहते हैं, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। श्रोताओं, हमारी चिंता के कारण विशेष रूप से यीशु हमारी सभी अच्छी योजनाओं और हमारे छोटे कार्यों को जानते हैं। सुसमाचार हमें बतलाता है कि एक बार उन्होंने एक विधवा को दो अधेले मंदिर की दान पेटी में डालते हुए देखा, और वे तुरंत इसकी ओर अपने शिष्यों का ध्यान इंगित कराते हैं। यीशु इस भांति हमारी चीजों को, जिन्हें वे हम में देखते, प्रशंसा करते हैं। जब शतपति यीशु के पास पूर्ण विश्वास के साथ आता है, यीशु उसकी बातों को सुनते और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस बात को जानना हमें कितनी सुनिश्चितता प्रदान करती है कि चाहे दूसरे हम में व्याप्त अच्छाइयों को ध्यान दें या ना दें, यीशु उन्हें देखते और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस उसने हमें प्रेम किया की एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। 6 जनवरी को प्रभु प्रकाश के महोत्सव पर संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पेत्रुस महागिरजा घर में यूकारिस्तीय बलिदान अर्पित किया और अपने प्रवचन में ज्योतिषियों द्वारा यहूदियों के राजा के जन्म की घोषणा और आकाश में उदित तारे पर चिंतन किया। इसी के मद्देनजर संत पापा फ्रांसिस ने 2 ट्वीट कर ज्योतिषियों का अनुकरण करने और दूसरों के लिए आशा की ज्योति बनने हेतु प्रेरित किया। पहले संदेश में संत पापा ने लिखा, जब हम ज्योतिषियों के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने तारे की खोज में अपनी आंखें स्वर्ग पर टिका रखी थी, तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी ऐसी चमकीली ज्योति बने जो एक दूसरे को प्रभु से मिलने के लिए प्रेरित कर सकें। दूसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, तारे से आकर्षित और निर्देशित होकर ज्योतिषियों ने बालक मसीहा को देखने के लिए हर कठिनाइयों को पार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि मानवता के इतिहास में कुछ अनोखा हुआ था और वे इस क्षण को खोना नहीं चाहते थे। #प्रभुप्रकाश। और संत पापा फ्रांसिस ने कोंसोलाता मिशनरीज की इतालवी मूल की धर्म बहन सिमोना ब्रेमिला को धर्मसंघी और धर्म समाजियों की प्रेरिताई के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट के रूप में नियुक्त किया। साथ ही कार्डिनल एंजल फर्नांडिस अर्टाइम को उप प्रीफेक्ट के रूप में नियुक्त किया। सिस्टर सिमोना कोंसोलाता मिशनरियों की सुपीरियर जनरल के रूप में काम कर चुकी हैं। संत पापा ने उन्हें सोमवार को समर्पित जीवन और धर्म संघी एवं धर्म समाजियों की प्रेरिताई के लिए गठित विभाग की प्रीफेक्ट के रूप में नियुक्त किया। वे 7 अक्टूबर 2023 से उसी विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं और परम धर्म पीठ के विभाग के प्रीफेक्ट नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। सिस्टर सिमोना वाटिकन विभाग की सचिव नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं। इससे पहले 2021 में सिस्टर अलेसांद्रा स्मारेली को सतत मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित विभाग में नियुक्त किया गया था। उधर प्रभु प्रकाश के महोत्सव पर पोलैंड में 905 शहरों में पारंपरिक ज्योतिषियों के जुलूस निकाले गए। आयोजकों के अनुसार इसमें 2 मिलियन लोगों ने हिस्सा लिया। यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों में भी जुलूस निकाले गए। संत पापा फ्रांसिस ने पोलैंड में पारंपरिक ज्योतिषियों के जुलूस के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं भेजा। अपने संदेश में संत पापा ने लिखा, मैं पोलैंड में पारंपरिक ज्योतिषियों के जुलूस में भाग लेने वालों को शुभकामनाएं देता हूँ, जो इस पहल के साथ वारसाव और कई पोलिश शहरों के गिरजाघरों और सड़कों पर अपने विश्वास की गवाही देते हैं, लेकिन विदेशों में भी, जहां यहां रोम में भी, मैं सभी पोलैंड वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। 17 वर्षों से पोलैंड के शहरों में रंगीन जुलूस आयोजित किए जाते रहे हैं, जो पूर्व के ज्योतिषियों द्वारा नवजात मसीह की आराधना का संकेत देते हैं। इस साल ये रिकॉर्ड संख्या में 905 शहरों में आयोजित किए गए। इसके अलावा विदेशों में भी आयोजित किया गया, जिसमें इटली, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, क्यूबा, कैमरून, चाड, नाइजीरिया, रवांडा और यहाँ तक कि कजाकिस्तान भी शामिल है। वार्सॉ के महाधर्माध्यक्ष एड्रियन गैलबास ने वाटिकन न्यूज को बताया, इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी यह दर्शाती है कि हमें पोलैंड और पोलैंड के बाहर इस उत्सव का अनुभव करने की आवश्यकता है। यह इस उत्सव का सार व्यक्त करता है कि हम सभी मसीह की आराधना करने के लिए उसके पास आना चाहते हैं, और यह आराधना हमें अपमानित नहीं करती बल्कि हमें ऊपर उठाती है। उधर यूनिसेफ अफगानिस्तान ने एक्स पर एक पोस्ट किया। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में पिछले साल लगभग 3 मिलियन बच्चों और देखभाल करने वालों को विस्फोटक सामग्री से होने वाले जोखिमों के बारे में प्रशिक्षण दिया है, जिसमें उन्हें पहचानने या उनसे बचने और रिपोर्ट करने के तरीके भी शामिल हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2024 में बिना विस्फोट वाले बमों या युद्ध के विस्फोटक अवशेषों से 500 से अधिक बच्चे मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। पिछली सरकार के दौरान तालिबान ने सड़कों और खेतों पर अंधाधुंध बारूदी सुरंगें बिछाई। बिना किसी व्यवस्थित मानचित्र के पूर्व सरकार और विदेशी सेनाओं की सुरक्षा लाइनों को निशाना बनाया। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने खुलासा किया कि वह पैसे की कमी के कारण अफगानिस्तान में भूख का सामना कर रहे 14 मिलियन लोगों में से केवल 7 मिलियन लोगों को ही सहायता प्रदान कर सकता है। उधर अल जजीरा के अनुसार फिलिस्तीनी अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि गाजा पट्टी के उत्तर में हुए हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए। दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में एक कार पर हुए हमले में कथित तौर पर 5 सुरक्षा गार्ड भी मारे गए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में कम से कम 45,658 लोग मारे गए हैं और 1,08,583 घायल हुए हैं। यह युद्ध शुरू होने के बाद से हर दिन औसतन 100 लोगों की मौत और 238 लोग घायल होने के बराबर हैं, और स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मारे गए लोगों में से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। सप्ताहांत में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि इसराइल ने उत्तरी गाजा में और अधिक नागरिकों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, क्योंकि इसराइल में रॉकेट हमलों के प्रतिशोध में हमले होने वाले हैं। दूसरी ओर हमास ने पुष्टि की है कि गाजा पट्टी में पूर्ण युद्ध विराम हासिल करने के उद्देश्य से कतर में इसराइल के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता फिर से शुरू हो गई है। अन्य क्षेत्रीय घटनाक्रमों में सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई अड्डा मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फिर से खुल जाएगा। दिसंबर में बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हवाई अड्डे को वाणिज्यिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।